मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 21 अक्टूबर 2015 है और आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 6 नौजवान साथियों के नाम हैं रितेश कुमार, आप बेगूसराय से हैं, नित्या सिंह मुगल सराय उत्तर प्रदेश से हैं, आनंद कुमार प्रियदर्शी खगड़िया बिहार से हैं, राकेश मिश्रा आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, पायल गिरी देवास मध्य प्रदेश से हैं और सागर रामचंद्र सुतार आप सतारा महाराष्ट्र से हैं। तो रितेश, नित्य, आनंद, राकेश, पायल और सागर, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सब आए, अभी कुछ लोग बस आने ही वाले हैं और सच में मन करता है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बातें की जा सकें, कितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दिया जा सके। मेरी तो दोस्तों बेचैनी यही रहती है और बस अगर यही बेचैनी, इससे थोड़ी सी कम भी सही बेचैनी आपके अंदर आ जाए तो फिर बात बनने में कोई भी हमें रोक नहीं सकता। मित्रों, अब कुछ थोड़ी सी खबरें हैं, इधर उधर की बातें हैं। मेरे पास एक मेल आया है अजीत सिंह का, उन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि वे कहां से हैं, लेकिन एक खुशखबरी उन्होंने ये लिखी है कि यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करती है सहायक कमांडेंट का, उसका रिटेन एग्जामिनेशन अजीत सिंह ने क्वालिफाई कर लिया है और उन्होंने लिखा है कि इसका बहुत बड़ा श्रेय इस ऑडियो गाइडेंस को और जो क्लिपिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनको जाता है। तो अजीत सिंह, आपको इस सफलता के लिए मैं अपनी पूरी टीम की ओर से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं कि आगे इसके जो भी इंटरव्यू की प्रोसेस होगी उसमें भी आपको सफलता मिले और आप एक कंप्लीट सक्सेस की खबर हम लोगों को सुनाएं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही एक थोड़ी सी दुखद खबर है, काफी दुखद खबर है और वो ये है कि एक स्टूडेंट हैं विष्णु प्रभाकर, जो पटना के स्टूडेंट हैं और वे अभी अक्टूबर की क्लास में यहाँ भोपाल आने वाले थे। उनकी बहुत ही उनका दुर्भाग्यजनक मेल मिला है कि उनकी माँ नहीं रही। विष्णु प्रभाकर, सच में इस सूचना ने मुझे अंदर से निराश कर दिया है, हताश कर दिया है, कहीं न कहीं हिला भी दिया है। ईश्वर का शायद विधान कुछ ऐसा ही होगा कि उनका इतने दिनों का ही साथ आप सबके साथ लिखा हुआ था, हम भारतीय दर्शन यही मानकर चलता है। निश्चित रूप से यह सूचना पढ़कर बेहद अफसोस हुआ है, लेकिन कुछ नहीं कर किया जा सकता। मित्रों, मैं आप सब की तरफ से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की तरफ से और अपनी एकेडमी की तरफ से, अपनी ओर से भी विष्णु प्रभाकर, आपकी माँ को बहुत बहुत दुखी मन से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपकी माँ को अपने चरणों में शरण दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और साथ ही आपको और आपके सभी परिवार के सदस्यों को इस इतने बड़े दुख को सहने की शक्ति दे। आप नौजवान हैं, निश्चित रूप से माँ का स्थान कितना बड़ा होता है ये बताने की चीज नहीं होती, बताने की बात नहीं होती, क्योंकि बताया ही नहीं जा सकता, ये तो सिर्फ अनुभव करने की बात होती है। वो स्थान आपके जीवन से रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके अपने अंदर की ताकत, आत्मा की शक्ति, मानसिक मजबूती इस रिक्त स्थान को जल्दी से जल्दी भर लेगी और अपनी माँ की जो स्मृतियां हैं, जो कोमल स्मृतियां हैं, जो मधुर स्मृतियां हैं, उनके सहारे आप अपना शेष जीवन अपनी माँ के साथ ही आराम से गुजारेंगे। ये ताकत, ये क्षमता, ये योग्यता, ये तरीका आप कह लीजिए कि आपको दिखाना चाहिए। तो एक बार फिर से विष्णु प्रभाकर की मां के प्रति हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ थोड़ी सी सूचनाएं हैं। एक स्टूडेंट का ये भी मेल था कि भोपाल के मौसम के बारे में बताया जाए कि मौसम कैसा होगा। इससे पहले जो सूचना भेजी गई थी, आप लोगों ने अगर उसमें से उसे ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें मौसम के बारे में दिया हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ मैं दोहराना चाहूँगा कि भोपाल का मौसम अभी सुहाना है। अभी की बात मैं कह रहा हूँ, 8 नवंबर तक जब तक आप यहाँ रहेंगे डेफिनेटली हल्की गुलाबी ठंड जिसे कहते हैं वो शायद शुरू हो जाए। इस बार थोड़ा सा मौसम थोड़ा गड़बड़ भी चल रहा है। अभी तो मौसम ऐसा है कि आपको गर्मी नहीं लगेगी। रात के समय में आप पंखे में बड़े आराम से चैन की नींद सोएंगे। वैसे भी चैन की नींद यहाँ आपको इसलिए भी आएगी दोस्तों कि 6-7 घंटे की जो पढ़ाई होगी और बहुत ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन एक बहुत ही ध्यान से सुनने की जो बात होती है वो आपको इस लायक बना देगी कि रात में बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर भी जहां तक मौसम का सवाल है, रात की गर्मियों में आपको करवट बदलते हुए रात नहीं बितानी होगी। बहुत प्यारा मौसम है। 8 नवंबर तक हो सकता है कि हल्की हल्की ठंड पड़ने लगे, तो बेहतर होगा कि आप एक आध हाफ स्वेटर उससे बचाव के लिए रख लें। हाँ, जो आपकी क्लासरूम है डेफिनेटली वहाँ एसी का इंतजाम है, क्योंकि जहाँ इतने सारे स्टूडेंट होते हैं मालूम है कि थोड़ी सी गर्मी वहाँ की ऑटोमेटिक इतने स्टूडेंट्स की मौजूदगी में बढ़ जाती है। तो आपका जो डे टाइम होगा वो एसी हॉल में कटेगा, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मित्रों, एक दूसरी सूचना यह है कि कल आपको मालूम है कि दशहरे की छुट्टी है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को दशहरे की पूर्व शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि ये जो दशहरा है, आप जानते हैं कि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है, उसके अंतर्गत बुराई के अंत का प्रतीक है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी है कि हे ईश्वर, हम सबके अंदर जो कुछ भी बुरा है, रावण के रूप में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वो प्रवृत्तियों के रूप में हो, चाहे वो विचारों के रूप में हो और चाहे वो एक्शन के रूप में ही क्यों ना हो, उन सबको जलाकर भस्म कर दे, ताकि हम सब एक अच्छे नागरिक बनकर एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश और अच्छे विश्व की रचना कर सकें। तो बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। और मित्रों, चूंकि कल दशहरे की छुट्टी है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो ऑडियो है वो कल नहीं आएगा, लेकिन जो प्रेस की क्लिपिंग्स हैं वो आप लोगों को अवेलेबल होगा। प्रेस क्लिपिंग्स के लिए आप यहां विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी सूचना के बाद अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्टेज पर, जो लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज होता है। हम लोग अभी कुछ बदलाव के बारे में, मानसिकता के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आज भी मुझे उसी सिलसिले को जारी रखना चाहिए, क्योंकि वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। एक बात मैं आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, कि मैं बात भले ही आप लोगों से कर रहा हूँ, स्टूडेंट से कर रहा हूँ, ऐसे स्टूडेंट से कर रहा हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहां एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो बातें मैं खासकर इसके लिए चुनता हूं अपने लाइफ मैनेजमेंट के हिस्से के लिए, तो उदाहरण भले ही मैं एक दूं, जैसे मैंने कल सुनने की कला के बारे में आपसे बातें की और मैं उसको क्लास में आप कैसे सुनेंगे उस उदाहरण के माध्यम से समझा रहा था, लेकिन मित्रों ये सभी जगह लागू होता है। तो ठीक इसी तरह से जब मैं बदलाव की बात करता हूं, चेंज की बात करता हूं, तो ऐसा नहीं कि केवल सिविल सर्वेंट बनने के लिए ही बदलाव की जरूरत है। सच यह है कि आप कुछ भी बनना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए बदलाव की जरूरत है। देखिए, सीधी सी बात है, मतलब बदलाव हमारे जीवन का इतना व्यावहारिक अंग है कि इसमें किसी फिलॉसफी को जानने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पैंट सिलवाई है, एक शर्ट सिलवाई है, कोई बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के बाद वो बहुत दुबला पतला हो जाता है, अब आप क्या करेंगे? अब दूसरी पैंट बनवाएंगे ताकि कम वो खिसके ना, शर्ट दूसरी बनवाएंगे, या मान लीजिए कि आप मोटे तगड़े हो गए, अब आप क्या करेंगे? उस शर्ट को बदलेंगे ना, क्योंकि अब आपका जो शरीर है कपड़ों में बदलाव की मांग कर रहा है। तो मित्रों, ये तो बहुत ही सामान्य सी चीज है। हम वही कपड़े नहीं पहन रहे हैं जब हम 5 साल के थे और हमारी मां पहनाया करती थी, चाहे वो कितने भी महंगे क्यों ना रहे हों, अब वो हमारे काम के नहीं है। हम उससे सस्ते कपड़े आज पहन रहे हैं, लेकिन वो बदले हुए कपड़े हैं। हर क्षण हर समय इस बदलाव की जरूरत महसूस होती है। मौसम के बारे में मैंने बात की, एक स्टूडेंट ने जानना चाहा कि मौसम कैसा है, क्यों जानना चाहा है, थोड़ी सी गहराई में जाकर के सोचिए ताकि वो मौसम के हिसाब से अपने कपड़े लेकर आ सके, तैयारी करके आ सके। मान लीजिए कि अभी वो गर्म क्षेत्र से आ रहे हैं तो बहुत ही पतले कपड़े महीन कपड़े पहन रहे होंगे, लेकिन अगर यहां ठंड है तो उन्हें स्वेटर लेकर आना पड़ेगा, अगर ज्यादा ठंड है तो कोट भी लेकर आना पड़ेगा, यानी कि मौसम के हिसाब से उन्हें बदलाव अपने अंदर लाना पड़ेगा। खाने में हम बदलाव करते हैं, इंटरटेनमेंट में हम बदलाव करते हैं, हर जगह तो हम बदलाव कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम ये बाहरी तौर पर सारे बदलाव करते हैं, मौसम के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, जरूरत के हिसाब से मौसम के हिसाब से खाना खाते हैं, ये बाहरी बदलाव हैं, तो हम अंदर के बदलाव की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं और क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर बाहर के बदलाव और अंदर के बदलाव में तालमेल नहीं बैठा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, पक्की गड़बड़ी होगी। उसको गड़बड़ होने से कोई रोक ही नहीं सकता, तो उस तालमेल की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, आप सब भोपाल आ रहे हैं, क्लास अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं। मैं सीखने शब्द को तो बेहतर मानता ही नहीं हूं, सीखने के लिए तो आप पता नहीं कहां कहां गए होंगे, इससे भी बेहतर जगहों पर गए होंगे, बड़ी बड़ी फीस दी होगी, लंबा वक्त गुजारा होगा और आप सीखे भी होंगे। यहां जो आप सब आ रहे हैं वो बदलाव के लिए आ रहे हैं, याद रखिए। आपको अपने अंदर से बदलना है, बाहर के बदलाव की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि बाहर का बदलाव हो सकता है कि अंदर कोई बदलाव पैदा न करे, लेकिन अगर अंदर बदलाव हो गया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बाहर बदलाव न पैदा करे। अंदर के बदलाव की ताकत इतनी है, क्योंकि अंदर का बदलाव एक ऐसा बदलाव होता है, वो परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसके ऊपर हमारे संपूर्ण जीवन के परिवर्तन का ढांचा खड़ा रहता है। दोस्तों, आप बदलाव के लिए आ रहे हैं और याद रखिए कि इस बदलाव का प्रमाण आपको घर से चलते ही दे देना है। अभी तक आपकी जो भी प्रवृत्तियां रही हों, जो भी आदतें रही हों, जो भी हैबिट्स रही हों, ठीक है, वो हैं और वही आप हैं। सच पूछे तो हम लोग जो कुछ भी हैं वो अपने हैबिट्स के का जोड़ ही हैं। हमारी सारी हैबिट्स को मिला दिया जाए, मेरी सारी हैबिट्स को मिला दिया जाए तो उसे डॉक्टर विजय अग्रवाल तैयार हो जाएंगे, आपकी सारी हैबिट्स को मिला दिया जाए तो उससे जो है सौरभ कोटवार तैयार हो जाएंगे। सीधी सी बात है, उसमें कहीं कोई समझ लीजिए कि गुंजाइश ही नहीं है कि उस पर डिबेट किया जाए। अब अभी तक आप जो कुछ भी रहे हों, लेकिन मित्रों, जैसे ही आप घर से निकलेंगे आपको हर जगह अपने इस बदलाव की शुरुआत करनी है। कैसे करेंगे इस बदलाव की शुरुआत, मैं थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। आप ट्रेन में सफर करेंगे, आप बस में सफर करेंगे, आप इस सफर को एंजॉय कीजिए। आपके बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उससे आप बातें कीजिए, उस अपनी बातें मत सुनाइए, उससे ज्यादा से ज्यादा बातें सुनिए, उसके अपने जगह की बातें, उसके राज्य की बातें, उसके खेतीबाड़ी की बातें, उसके प्रोफेशन की बातें, और उसकी मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज खा रहे हैं तो उसको भी कहिए कि आप भी लीजिए, आप देखेंगे कि वो मना करेगा, और यदि उसने ले लिया तो फिर वो आपका भक्त हो जाएगा, उसके बदले में थोड़ी देर के बाद वो कई गुना आपको पे करेगा। ये सारे प्रैक्टिकल, ये सारे एक्सपेरिमेंट आप शुरू कर दीजिए, आपको जीवन का बड़ा मजा आएगा और शायद जीवन को मुझे पहली बार लगता है कि एक नए नजरिए से आप देख भी पाएंगे। उनको विश कीजिए, चाहे वो पहले उतरे या आप पहले उतरे, फिर से उस अभिवादन कीजिए। स्टेशन पे पहुंचने के बाद आपको ऑटो मिलेगा, ऑटो से ज्यादातर लोगों के झगड़े ही होते हैं, क्या करें, उठपटांग पैसे मांगते हैं, गुस्सा आ जाता है, झगड़ा हो जाता है। आप देखिए कि आप अपने कैसे संतुलन को बना करके रख सकते हैं, उससे बड़े प्रेम से बात कीजिए कि भैया इतना तो नहीं होता, इतनी किलोमीटर तो है, इतने किलोमीटर का तो इतना पैसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, चलिए आप नहीं मान रहे हैं तो मैं दूसरा देख लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। बड़े इत्मीनान से, बड़े प्रेम के साथ उससे बातें कीजिए, आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो आपका मुरीद हो जाएगा, आपको वहां झगड़ने की, गुस्सा दिखाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा अच्छा, तुमने हमको नया समझ रखा है क्या, क्या हमको बेवकूफ समझते हो, इतने पैसे बोल रहे हो। यहां अपनी भाषा को बदलिए, आपकी भाषा बदल जाएगी। जैसे ही आपकी भाषा बदल जाएगी आपका अंतर्मन बदल जाएगा, और जैसे ही अंतर्मन बदल जाएगा सामने वाले का व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। करके देखिए, ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। फिर आप होटल में पहुंच जाएंगे, जहां आपका नाम लिखा हुआ, जहां आपके ठहरने की व्यवस्था की गई है, आप वहां पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद वहां रिसेप्शन पर आपको कोई मिलेगा, उससे बड़े तहजीब से बात कीजिए, उसको नमस्कार कहिए, बताइए कि मैं एकेडमी के फॉर एक्सीलेंस के लिए आया हुआ हूं, क्लासेस के लिए मेरा पहले से यहां रजिस्ट्रेशन बुकिंग कराई हुई है, मेरा ये नाम है, प्लीज किस कमरे में मुझे जाना है मुझे बताइए। वो आपको बड़े प्रेम से गाइड करेगा। और अगर आप वहां सोचेंगे कि अरे मैं तो कस्टमर हूं, बराती बनकर के मत आइए, बराती की मानसिकता को छोड़ दीजिए कि आप तो किसी, जैसे बारात में मैंने देखा ना, जो कि जो बराती आते हैं, अरे बाप रे बाप, बराती क्या हुए, बस तोपचंद हो गए, आश्चर्य होता है मुझे, क्या हो गया भैया, बराती क्या हो गए, सारी चीजों की फरमाइशी हो रही है, सारी चीजों पर केवल अधिकार की ही भावना है, कर्तव्य दायित्व तो कुछ है ही नहीं, व्यवहारिकता कुछ है ही नहीं, जब मर्जी है जो कुछ भी है वो मंगा रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और सामने लड़की वाले बेचारे पीछे पड़े हैं क्योंकि वो भयभीत है, डरे हुए हैं, लग रहा है जैसे कि वो गुलाम बने हुए हैं। उस मानसिकता को छोड़िए, बड़े प्रेम से बात कीजिए, कोई समस्या आती है वो भी उनसे प्रेम से बात कीजिए, वो आपके सब में मदद करेंगे, प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है कि वो किसी को भी जीत सकता है, याद रखिए। उसका इस्तेमाल करके देखिए, इस औजार का एक बार प्रयोग तो करके देखिए कि आपको कितना मजा आता है। इसके बाद वहां से तैयार होइए और फिर जहां पर आपको ब्रेकफास्ट का इंतजाम किया गया वहां पहुंचिए, और फिर वहां पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स के साथ मिलिए, खुलिए, आप कहां से आए हैं भाई साहब, अच्छा मैं तो यहां से आया हूं, अरे वाह चलिए 15 दिन मजा आएगा, और ये मतलब फिर बातें कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए कीजिए। और इस बीच कोई भी समस्या आती है तो आप अपने स्तर पर ही उसका सलूशन ढूंढिए, उसके सलूशन है, तुरंत वैसाखी की मदद मत ले लीजिए, ये मौका है जब आप समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो याद रखिए सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ समस्याओं से ही जूझते रहेंगे, आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा कोई ना कोई समस्या लेकर आएगा, याद रखिए आपके समस्या को सुलझाने के लिए कोई नहीं आएगा, समस्या लेकर आएगा क्योंकि आप में वो मानकर चल रहा है कि इतनी कुवत है कि आप उसकी समस्या को सुलझा सकते हैं, सरकार ने आपको इतनी ताकत दे रखी है कि आप उसकी समस्या का निराकरण उसको दे सकते हैं, और सरकार इसके बदले में सरकार ने हमें रखा है और इसके बदले में वो हमें पे कर रही है, तो उसकी शुरुआत अभी से कीजिए क्योंकि यहां से आपकी पर्सनालिटी इमर्ज होगी और यही पर्सनालिटी फिर आपको इंटरव्यू में मित्रों 275 में 200 नंबर तो कम से कम दिला ही देगी, उसकी तैयारी आप कमरे में बैठकर नहीं कर सकेंगे। तो मित्रों आप सब अब जर्नी की शुरुआत करने वाले ही हैं, तो प्लीज मेक अप योर माइंड, आप अपने दिमाग को इस लायक बनाइए कि वो जर्नी को भी एंजॉय करे, चाहे जितनी भी परेशानियां हो, डजंट मैटर, घटनाओं का जीवन में कोई महत्व नहीं होता है, महत्व होता है कि हम उन घटनाओं को अपने अंदर किस तरीके से घटित होने दे रहे हैं, घटनाएं हमारे अंदर घटित होती हैं और जैसी अंदर घटित होती हैं वैसे ही उन घटनाओं का हम एहसास करते हैं और घटनाओं के साथ हमारे संबंध स्थापित होते हैं। मित्रों जो बात मैं आपसे जर्नी के बारे में कह रहा हूं वो बात सभी पर लागू होती है, चाहे वो अपनी दुकान खोलने के लिए कोई व्यापारी दुकान पे जा रहा हो, नौकरी करने के लिए कोई दफ्तर जा रहा हो, या कि कोई महिला खाना बनाने के लिए ही क्यों न जा रही हो, या स्कूल से छुट्टी होकर के आए हुए अपने बेटे को लेने के लिए वो सड़क पर खड़े होकर बस के आने का इंतजार ही क्यों न करती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हम उसे किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल, दैट इज द लाइफ एंड दैट इज द मिस्ट्री ऑफ सक्सेस, फार्मूला ऑफ सक्सेस, एंजॉइंग द लाइफ, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आज बस मैं इतनी ही बातें कहूंगा और आज थोड़ा सा वक्त भी ज्यादा हो गया है क्योंकि शुरू में थोड़ा सा काफी वक्त निकल गया, लेकिन बहुत जरूरी बातें आप लोगों से करनी थी। अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। दोस्तों आप देख रहे हैं एक बड़ी विचित्र सी चीज जिसकी शुरुआत मैंने तभी कर दी थी जिस दिन इससे जुड़ी हुई पहली खबर आई थी। मैंने आपको बता दिया था कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना हो रही है और ठीक वही देख रहे हैं कि सिलसिला चल रहा है और फिर से समाज में जो असहिष्णुता बढ़ती जा रही लोगों को लग रहा है उसके बारे में फिर से आकाशवाणी में समाचार था और ये जो समाचार था वित्त मंत्री के बयान को लेकर के था। आप लोगों ने उसे सुना, उस बयान में ऐसा कुछ नया नहीं था जिसको लेकर के मैं आपसे चर्चा करूं, लेकिन मैं आपको केवल इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि कैसे सिविल सर्विस में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। कभी कभी यह भी होता है कि जब कोई टॉपिक बहुत वेल नोन हो जाता है तो सिविल सर्विस में उसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि उनको लगता यह है कि भाई ये तो बहुत ही वेल नोन है, लेकिन ये जो टॉपिक है याद रखिए इसका संबंध केवल समाज की असहिष्णुता से ही नहीं है, इसका समाज कॉन्स्टिट्यूशन से भी है, इसका समाज सिविल सर्विसेज से भी है, इसका संबंध आपके इंटरव्यू से भी है, इसका संबंध हमारी संस्कृति से भी है, इसका संबंध हमारे इतिहास से भी है, इसका संबंध हमारे समाज शास्त्र से भी है। कितने डायमेंशन हैं इस छोटे से न्यूज के, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण न्यूज के। तो इसे आपको पकड़ के चलना है, इस टॉपिक को। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारी तैयारी सिर्फ एग्जामिनेशन के लिहाज से करनी है, आपको जो तैयारियां करनी है कुछ ऐसी भी तैयारियां करनी होती हैं दोस्तों जो दूसरों की मदद करें, यानी कि दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनकी भी वो मदद करें। और अभी मैंने जो बताया है कि इस टॉपिक का संबंध किन किन से है, उन सब में ये जो टॉपिक है सहिष्णुता असहिष्णुता सहनशीलता, इसमें मदद, ये दूसरों में मदद करेगी। दोस्तों इसी के साथ ही आप देखा कि आपने फिर से एक दुखद घटना जो पंजाब में घटी है, जिसके बारे में बहुत क्लियर तौर पर नहीं लिखा गया, वो भी इसी के साथ जुड़ी हुई थी कि एक धार्मिक ग्रंथ के का अनादर को लेकर के वहां तनाव की स्थिति हो गई, और तनाव की स्थिति इतनी ज्यादा हो गई कि वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस अर्ध सैनिक बल वहां तैनात करनी पड़ी। सोच करके देखिए, फिर वो धार्मिक ग्रंथ का अनादर, क्यों धार्मिक ग्रंथ का अनादर, समझ में नहीं आता है। सभी ग्रंथ श्रेष्ठ हैं, उस ग्रंथ का अनादर करके किसी को भी क्या आदर मिल सकता है। कोई किताब चाहे जैसी भी हो, वो साहित्य है, धर्मशास्त्र है, पुराण है, नैतिकता की किताब है, चरित्र की किताब है, पुस्तक पुस्तक होती है, लेकिन आपको अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है या कुछ और करना है तो आप इन सब का अनादर करके सोचते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, और फिर एक समाज में तनाव का माहौल बढ़ जाता है। मित्रों, बार बार आप देख रहे हैं कि जैसे अभी भारत और क्रिकेट पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट की बात है, उसके बारे में भी लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है ये सही नहीं है। अभिव्यक्ति है, आप बात कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए, ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक राइट्स में हमारे आते हैं, लेकिन भावनाओं को किसी के ठेस पहुंचाना या इस तरह से हिंसा के कामों में लिप्त होना, ये कहीं किसी भी डेमोक्रेसी को न तो मदद पहुंचाता है और न उसे सुरक्षित रखता है। इससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, समाज में असहिष्णुता का माहौल बढ़ता है, जो हम कुछ समय से लगातार महसूस कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं, महसूस तो क्या कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो एक घटना का यहां भी एक जिक्र किया गया था दोस्तों। दूसरी जो खबर थी, मुझे लगता है कि इस पर आप लोगों को एक थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए, वो है अनिवार्य वस्तु अधिनियम। खासकर दालों की जमाखोरी के मामले में आपने देखा कि किस तरह से अब छापे पड़ रहे हैं। छापे पड़ने के दौरान दाल का स्टॉक दुकानदारों के पास से निकल रहा है, उसे जब्त किया जा रहा है, तो इससे बाजार में दाल की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और मूल्य थोड़े से कम हो जाएंगे। और खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद 10-15 रुपए किलो दाल की कीमत कम भी हो गई है, और सरकार भी जो आयातित दाल है उसे 120 रुपए किलो में बेच रही है। ये सारी चीजें हैं जो एक मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सरकार अपने के पास हथियार होते हैं। मित्रों, मुझे एक चीज और भी लगती है, वो ये कि ठीक है, सरकार का तो ये हथियार है और सरकार को अपना काम करना ही चाहिए, क्योंकि उसके दायित्वों में से एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जनता का भी तो कुछ दायित्व हो सकता है। जनता का दायित्व तो सच में क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है, हम दाल नहीं खाएंगे कुछ समय तक के लिए, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें प्रोटीन है। एक मेरे मन में ऐसे ही विचार आए, क्योंकि कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अभी अमेरिका में एक आंदोलन चला, बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला, बाई अमरीकी, मतलब अमेरिका की चीजें खरीदिए, और उसमें जो खासकर वो मोबाइल फोन होता था, वो मोबाइल उन्होंने मोटरोला का खरीदने के लिए अभियान चला और बड़े गजब तरीके से सक्सेस हुआ, वहां सभी मोटरोला का ही मोबाइल खरीदने लगे। तो मुझे लगा कि जनता की ताकत के सामने तो कोई दूसरी ताकत नहीं टिक सकती, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस में है ना, क्या है ना कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो कॉमन मैन की पावर तो बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन चलिए वो तो एक अलग मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं। तो अनिवार्य वस्तु अधिनियम पर आपकी तैयारी हो जानी चाहिए कि कब बना था और इसमें क्या क्या गवर्नमेंट को पावर होते हैं और इसके उद्देश्य क्या है, थोड़ी सी जानकारी हो जानी चाहिए ताकि इसका कहीं आप उपयोग एक कंटेंट के रूप में कर सके। मित्रों, एक दूसरी खबर थी, वो ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आपको मालूम है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य मिलने आए थे उनके निवास पर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एश्योर किया था कि 23 जनवरी जो नेताजी का जन्म की तिथि पड़ती है 23 जनवरी 2016 से, वो नेताजी के बारे में जो इस तरह से गुप्त फाइलें हैं या सीक्रेट फाइलें हैं उनको जारी करना शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली मैंने उसी समय आपको बताया था कि दूसरे देशों में भी इस तरह की जानकारियां हैं। तो हमारी विदेश मंत्री अभी वहां रशिया गई हुई हैं, तो वहां उन्होंने वहां के विदेश मंत्री से बात की है कि वो इस तरह की हमें जानकारी प्रोवाइड करें। तो ये कह लीजिए कि एक सिलसिला शुरू हो गया है जानकारियां हासिल करने का। अब देखते हैं कि इसमें सफलता कितनी मिलती है, क्योंकि सीधे सीधे वो हमारे अपने हाथों में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो फाइल है मुझे लगता है कि शायद उसे सामने लाने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम ही अपने फाइल सामने नहीं ला पाएंगे तो फिर दूसरे देशों पर उस तरह का नैतिक दबाव डालने का एक तरह से नैतिक आधार हमारा काफ़ी कमजोर पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, एक जो इम्पॉर्टेंट सूचना के रूप में जो खबर है वो ये है कि इस बार जो पब्लिक स्पीक का विषय है जो मंडे को आना है वो है अच्छी शासन प्रणाली में, एक तरह से अच्छी शासन प्रणाली में जो खासकर जो केंद्रीय सतर्कता है उसका कितना रोल है, एक विजिलेंस का कह लीजिए, जागरूकता जिसको हम विजिलेंस कहते हैं, विजिलेंस किस तरह से जो हमारे जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको कैसे उसमें मदद कर सकता है, और साथ ही साथ सतर्कता से कैसे हमारे सुरक्षा के उपाय बढ़ सकते हैं। दो चीजें हैं, मतलब विजिलेंस है, एक सतर्कता है, और सतर्कता के दो पक्ष पर पब्लिक स्पीक के विषय को रखा गया है। नंबर एक, गुड गवर्नेंस, अच्छी शासन प्रणाली, और दूसरा है सुरक्षात्मक उपाय कि कैसे अगर हमारे देश के नागरिक विजिलेंट होते हैं तो देश ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। मित्रों, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का सिलेबस में जो चैप्टर है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी, उसको समझने में काफी मदद मिलेगी, और फिर जो विजिलेंस कमीशन है स्वाभाविक रूप से उसके बारे में तो आपको जानकारी मिलेगी ही, जो आपके पॉलिटिकल साइंस का एक हिस्सा भी है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसे जरूर सुने। इस पर मेरा एक लेक्चर यहाँ जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसमें एक लेक्चर भी हुआ है इसी विषय पर। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड होकर के इसकी जो DVD है वो मेरे पास आ भी गई है। अभी चूंकि इधर की व्यस्तता है तो उसे हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में मैं इस लेक्चर को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि वहां मैंने जो एक विजिलेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको लाइफ से जोड़ करके देखा है, उसको सिस्टम से जोड़कर नहीं देखा है, वो एक इंटरनल विजिलेंस विद इन हमारे अंदर ही एक तरह की सतर्कता होनी चाहिए, और किस तरह से वो हमारी लाइफ में हमारे कॉन्शस को प्योर करने में, हमारे कॉन्शस को स्ट्रांग करने में मदद करती है, और अल्टीमेटली हमारे लाइफ को कैसे बेहतर बना सकती है, ये बातें मैंने उसमें की हैं, और मुझे लगता है कि वो शायद आप लोगों के लिए उपयोगी भी हो और शायद मजा भी आए। तो कुछ समय के बाद मैं आप लोगों को ये जो लेक्चर है ये डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी सुनवा सकूं। दोस्तों, AIR न्यूज के बारे में इतना ही। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, और आज न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स काफी कम है, इस प्रकार आप थोड़े से इत्मीनान के साथ नॉलेज जो सेंटर है उसमें विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी न्यूज क्लिपिंग्स है विराग गुप्ता के द्वारा लिखे गए आर्टिकल की, जो खासकर जिसका टाइटल है न्याय क्षेत्र में पुनर्निर्माण का वक्त, दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है। आप लोगों को मालूम है कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो एक तरह से विवाद का कारण बना हुआ है, कुछ लोग उसके फेवर में हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट में हैं। विराग गुप्ता ने निश्चित रूप से उस जजमेंट की एक तरह से आलोचना ही की है, अलग तरीके से की है, न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में की है। इन्होंने कुछ बहुत अच्छे प्रश्न उठाए हैं, एक दो मैं शेयर करना चाहूंगा कि एक तो यह कि इसको लेकर के, नियुक्ति को लेकर के कई आयोग बने, कई और सब ने ये सजेस्ट किया, आयोग का मतलब एक सजेशन देने के लिए, और सब ने ये सजेस्ट किया कि नहीं, जो कॉलेजियम प्रणाली है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं उसी के तहत नियुक्ति होनी चाहिए, उस पर पुनर्विचार किया जाए, मतलब उसको परफेक्ट नहीं माना है। दूसरी चीज उन्होंने एक ये भी बात कही है कि जुडिशियरी में भी अब अपने आप में ही एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई है। द्वंद्व की स्थिति इस मायने में लेकर के कि उन्होंने कुछ बड़े आंकड़े दिए हैं कि जो पहले हमारे चीफ जस्टिस थे भरूचा जी, उन्होंने 15 ईयर्स पहले कहा था कि हाईकोर्ट के 20% जज भ्रष्ट हैं, और बाद में फिर जो पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू जी जो हुए, उन्होंने ये कहा कि लगभग 50% जज भ्रष्ट हैं। इन्होंने एक और भी डेटा दिया है, और वो दिया है कि बहुत से जो जजेस हैं वो मतलब इन्होंने डाटा दिया है, मतलब आपको पढ़ दे रहा हूं कि देश के 13 हाई कोर्ट में 52%, मतलब 50% समझ लीजिए, जो जज हैं 99 जज, वो बड़े वकीलों और जजों के रिश्तेदार हैं। तो आपको मालूम है कि जब न्याय में इस तरह की बात होगी तो फिर तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी ही। तो इस प्रश्न को भी उन्होंने उठाया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि चलिए ये तो सब होता रहता है, नियुक्ति कौन करेगा, लेकिन न्यायालय को ये भी तो सोचना चाहिए कि अभी 3.5 करोड़ जो लंबित है मामले कोर्ट में, उसके लिए न्यायालय को कुछ करना चाहिए। और जब ये मामला आया तो इसको 6 महीने में न्यायालय ने निपटा दिया। कुछ और भी उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं कि बहुत से होते हैं कि किसी कातिल की सुनवाई रात में की जाती है, तो बाकी पब्लिक कहां है, न्याय को इस आधार पर भी सोचना चाहिए। और एक चीज इन्होंने ये भी कहा है कि न्यायालय ने बड़े तरीके से अपने आप को आरटीआई से अलग रख लिया है, ऐसा क्यों किया। तो इन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हैं, ये आर्टिकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, अंडरलाइन किया हुआ है, आप ये देख लीजिएगा। साथ ही इकोनॉमिक टाइम्स का भी इसी टॉपिक पर एक आर्टिकल है, और मित्रों इसके अतिरिक्त 3 आर्टिकल्स और हैं जो सामान्य तरीके के ही हैं, उन्हें आप देख लेंगे और जब पढ़ेंगे तो आपको बड़े आराम से वो समझ में भी आ जाएंगे। तो मित्रों अब न्यूज़पेपर्स की भी बात खत्म, और अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर, और इसके बारे में बस इतना ही कि सभी ईमेल लिखने वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इनमें से कुछ साथियों के नाम हैं, सौरभ कोटवार जो बयाना राजस्थान से हैं, पूजा यादव अलवर आप भी राजस्थान से ही हैं, यादव वाघ नासिक से हैं, आलोक यादव जांजगीर से हैं, मनीषा और सेजुल कुमार राजकोट से हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों इसी के साथ ही अब मैं इसे समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कल होने वाले दशहरे के लिए, और एक ऐसे प्रतीक के लिए जो सही मायने में एक तरह से अंधकार पर प्रकाश की जीत की बात करता है, और बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का संदेश हम सभी को देता है। अभी के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि यह एक प्रकार से संकीर्णताओं पर कहीं न कहीं उदारता की भी जीत का संदेश हम सबको दे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो मित्रों अब मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, नमस्कार।